ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना से भारत में हल्दी उत्पादन के प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय अजैविक ताण प्रबंधन संस्थान पुणे के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार कदम और स्पाइसेस बोर्ड के सदस्य पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह।
देश में स्पाइस बोर्ड की तर्ज पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका शुभारंभ मकर संक्रांति के दिन सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उसका शुभारंभ किया। और इस गोल्डन स्पाइस नाम से, जिसे स्पाइस गोल्ड हल्दी कहते हैं, इस बोर्ड के गठन को लेकर बहुत लंबे समय से हल्दी किसानों की मांग चल रही थी कई स्टेट्स में, जिसका सरकार ने पूरा कर दिया है। इस पूरे परिदृश्य को देखें तो देश में हल्दी के उत्पादन, हल्दी के किसान और इससे होने वाले लाभ और बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को इससे क्या क्या लाभ होगा और हल्दी से हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर, किसानों के आमदनी पर क्या असर पड़ेगा, इस पूरे मामले पर, इस पूरे इशू पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं ICR राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान पूना के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार कदम। और बीच में चर्चा के दौरान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे पद्म श्री चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी, जो स्पाइस बोर्ड के मेंबर हैं और स्पाइस यानी मसालों के उत्पादकों को, किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम करते हैं। और साइंटिस्ट क्या काम कर रहा है उसको लेकर ये चर्चा में हम हिस्सा लेंगे। डॉक्टर कदम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के इस कदम का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे आप किस तरह देख रहे हैं?
अभी आप हल्दी की खेती के बारे में देखेंगे तो पूरे जो वर्ल्ड में, हमारा भारत देश जो है, यह हल्दी के फसल में बहुत ही आगे बढ़ गया और नंबर एक पे है। जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 70% एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में जो शेयर है भारत का है। तो ऐसा बढ़ावा, जैसे कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है, तो ये भारतीय किसानों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाएगा, क्योंकि इससे जो भी अभी हमारे किसानों को दिक्कतें आती है वो पूरी दिक्कतें उससे सॉल्व हो जाएगी।
बोर्ड के आने के बाद किसानों को किस तरह से लाभ में, बोर्ड उन्हें कौन सी फैसिलिटी, कौन सी सुविधाएं मुहैया कराएगा, जिससे लग रहा है कि हल्दी किसानों को बहुत लाभ होगा, वो क्या क्या चीजें मिलेंगी उनको?
अभी हल्दी की खेती के बारे में हम देखेंगे तो किसानों को मुख्य दिक्कतें जो आती है, जो हल्दी की फसल निकालने के बाद, क्योंकि हल्दी की फसल तो वो अच्छी तरह से पकाते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया जो है, इसके लिए जो मायने रखते हैं, जो जो विविध घटक जवाबदार है, उसमें उनको दिक्कतें आती है। जैसे कि हल्दी को उबालने के बाद है, हल्दी को पॉलिश करना है और पॉलिश करने के बाद ग्रेडिंग और मार्केटिंग करना है, तो इसमें जो है उसमें सभी किसान इकट्ठा नहीं होते हैं, इसलिए पूरा ट्रेड जो है ये पूरा व्यापारियों के हाथ में है। एक क्षेत्र के नीचे सभी किसान आ जाएंगे और उसको जो भी फैसिलिटीज है, जैसे कि प्रोसेसिंग वाली फैसिलिटी है, ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड के,
जो ये नेशनल स्पाइस बोर्ड है वह इसी तर्ज पर यह काम करेगा। और हल्दी किसानों को, जो देश के करीब करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में किसान फैले हुए हैं विभिन्न राज्यों में, ये कौन से बड़े राज्य हैं जहां पर हल्दी की खेती ज्यादा होती है, वहां के किसान इसकी खेती के प्रति ज्यादा रुचि रखते हैं?
अभी पूरे भारत में हम देखेंगे तो तकरीबन 3 लाख के ऊपर हेक्टेयर इसका एरिया है और जो टोटल उसके जो प्रोडक्शन है ये 11.69 लाख मेट्रिक टन इसका उत्पादन होता है। फिर भी हम जो उसका पिछला, जब से हल्दी की शुरुआत हमारे भारत देश में हुई है, ये देखेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अभी इसमें से जितने भी राज्य है, तकरीबन 20 से ज्यादा राज्य इसमें शामिल है। इसमें प्रमुख उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र है, उसके बाद जो है तेलंगाना है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, केरला है, और सभी जगह खाली जो पहाड़ी वाला एरिया है, जो हमारा श्रीनगर में जहाँ बर्फ गिरता है, वो छोड़ के अगली जम्मू से कन्याकुमारी तक ये हल्दी उगाया जा सकती है और इधर हमारे कच्छ से नॉर्थ ईस्ट तक ये हल्दी जो है, हल्दी की फसल ले जा सकती है।
डॉक्टर साहब, हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बहुत गुण हैं। इसमें खास तरह से कहा जाता है मेडिसिनल वैल्यू इसकी है, इसके जो औषधीय गुण हैं और पोषक न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं, इसको लेकर के जो मसाले में सबसे ज्यादा हमें लगता है उत्पादन आज की तारीख में धनिया के बाद या मिर्ची के बाद हल्दी का ही उत्पादन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर भी है। यहाँ हल्दी जितनी उगाई जाती है और सबसे ज्यादा खाई भी जाती है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में आज की तारीख में हल्दी की मांग बढ़ी है। खास तौर से जब कोरोना का पीरियड चला, जो कोरोना काल के दौरान हल्दी की गुणवत्ता को देखते हुए दुनिया भर से मांग आने लगी और इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला। तो आप इसे किस तरह देखते हैं, एक्सपोर्ट को जो मौका मिलेगा, किसानों को अपनी उपज को दुनिया के बाजार में बेचने का मौका मिलेगा तो किसानों को लाभ होगा और किसानों को एकजुट करना और हल्दी की गुणवत्ता को बनाए रखना, उत्पादकता जो आप अभी कह रहे थे कि घट रही है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी बाजार उपलब्ध कराना, चाहे वो घरेलू बाजार हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, ठीक ऐसे ही इसके लिए गुणवत्ता का बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी का बढ़ाना, यानी उत्पादकता को बढ़ाना और गुणवत्ता को, दोनों स्तरों पर साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक हमारे हैं ICAR के जो सेंटर्स हैं वहाँ किस तरह से काम हो रहा है और किस लेवल पर है।
जैसे कि आपने सही बात कही कि कोरोना के बाद पूरे वर्ल्ड में यह हल्दी के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए सभी लोग देख रहे हैं। जितने भी अलग अलग तरीके के काढ़े बने, दवा बनी, उसमें बेस है जो हल्दी का, जो वापर है वो हल्दी का वापर बहुत बड़ा है। तो अभी ये जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, तकरीबन हल्दी में जो मुख्य घटक है कुर्कुमिन बोल के, तो ये कुर्कुमिन जो है वो कुर्कुमिन का औषधि गुणधर्म जो है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए माना जाता है। हमारा जो हल्दी के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में हल्दी की फसल जो बोई जाती है, उसमें नॉर्थ ईस्ट की हल्दी है जो एक नंबर की हल्दी मानी जाती है, कि जहाँ का लकाडोंग टर्मरिक बोलते हैं। तो ये लकाडोंग टर्मरिक में कुर्कुमिन परसेंटेज जो है वो 7 या 8% के ऊपर रहती है। तो ये हल्दी जो हमारे पूरे जो ग्लोबल में या वर्ल्ड में इसको अच्छी हल्दी मानी जाती है, तो इस हिसाब से अलग अलग जिलों का, अलग 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 देशों का, अलग अलग राज्यों का हल्दी की फसलों के बारे में अलग अलग उनकी गुण वैशिष्ट्य है। जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे हम भौगोलिक नामांकन करते हैं, तो हल्दी में अब तक पूरे भारत में 6 भौगोलिक मानांकन हो चुके हैं। ये हर एक भौगोलिक मानांकन की हर एक उसकी विशेषता है। जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 3 हल्दी के बारे में भौगोलिक मानांकन प्राप्त है। एक है जो सांगली टर्मरिक है, दूसरा जो है वायगांव टर्मरिक है, और तीसरा अभी तो 2-3 महीने पहले वसमत हल्दी का भौगोलिक मानांकन हुआ है। तो इसके अलावा और भी, जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में लकाडोंग टर्मरिक है, उसका भी भौगोलिक मानांकन है, जो मानांकन हो गया है। और दूसरा जो है कि इरोड टर्मरिक है, इरोड टर्मरिक का भी भौगोलिक मानांकन हो गया है। और कंदमल हल्दी जो ओडिशा की है, तो उसका भी भौगोलिक मानांकन हो गया है। अभी ये जो अलग अलग किस्मों के अलग अलग जगह से आप देखेंगे तो उनकी वैशिष्ट्य है, और उनके जो अलग अलग वैशिष्ट्य, गुण वैशिष्ट्य है, उससे ये हल्दी जानी जाती है। अभी ये हल्दी को बढ़ावा देने के लिए हमें जो भौगोलिक मानांकन प्राप्त जो यूजर्स है उनको इंक्रीज करना है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए हम जो है नए नए किस्में जो है वहां के जो सुधारित सिलेक्शन से, तो वो अच्छे फसल करेंगे तो उसको और भी अच्छा मुनाफा फार्मर्स को मिलेगा, उसमें क्वालिटी हल्दी हमें मिलेगी। जैसे कि अभी लकाटांग वो ट्रेडिशनली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई क्लोन्स ऐसे हैं कि जिसमें 10 के ऊपर में कुर्कुमिन मिलता है। तो ऐसी जो हल्दी है उनको छान के, उसको प्रोसेस करके, उसको अलग अलग प्रक्रिया करके हमें फार्मर्स की तरफ बांटना है और उनको बढ़ावा देना है।
हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं डॉक्टर चंद्रशेखर रघुवंशी बनारस से, जो पद्मश्री हैं और स्पाइस बोर्ड के मेंबर भी हैं। और हम आपसे पहला सवाल यही करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है और इस गठन करने के साथ ही सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि 2030 तक हल्दी, एकमात्र मसाला हल्दी का निर्यात $1 अरब के आंकड़े को भी हम पार कर सकते हैं और इसका एक लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बोर्ड की क्या भूमिका होगी और इसके लिए किसानों को किस तरह की मदद की उम्मीद है?
40 सालों से जो मांग रही है किसानों की, जो है कि एक हल्दी बोर्ड की स्थापना किया जाए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की, जो कल मकर संक्रांति के दिन इसका उद्घाटन हुआ है, इसमें पीयूष गोयल जी ने उद्घाटन किया है। और सबसे बड़ा जो काम है बोर्ड का इन क्षेत्र में, इसको विकास जो है, विकास के लिए बोर्ड की गठन होता है। हम इम्पोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, चाहे उत्पादन बढ़ाएंगे, मीटिंग होती है बोर्ड की, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है इसमें इनका जो है एक पार्क बनेगा जहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होगा। तो इस तरह से जो है बोर्ड की रचना करके जो है इस काम को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम लोग का लक्ष्य है कि 5 साल बाद हम लोग इस उत्पादन को दुगुना 20 लाख टन करने की सोच रहे हैं। और भारत आज भी जो है 70% उत्पादक जो है भारत पूरे विश्व में हल्दी का है, और इसको हम लोग इसको दुगुना करने के प्लान में हैं। और अभी तक जो है स्पाइस बोर्ड के ही मात्र काम होता था, लेकिन आज अलग बोर्ड बनाने से इसमें और तरक्की आएगी और विकास होगा, क्योंकि हल्दी का हर जगह उपयोग है।
बोर्ड ने 2030 तक हल्दी निर्यात को बढ़ाकर $1 अरब के आंकड़े को पार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें या बोर्ड को क्या क्या उपाय करने होंगे, और इस बोर्ड के गठन के बाद किसानों को क्या लाभ मिलेगा इस बोर्ड से? जैसा आपने कहा कि प्रोसेसिंग का लाभ मिलेगा, बीडिंग का लाभ मिलेगा, और उनको अच्छे सीड कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि अभी डॉक्टर जितेंद्र कुमार कदम बता रहे थे कि हमारी उत्पादकता कहीं न कहीं कम हो रही है, इसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाएंगे, क्यूमिन की मात्रा परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाएगा, इसकी क्वालिटी के सुधार के लिए किस दिशा में और कैसे काम होगा, और देश में कितने ऐसे सेंटर या रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं?
अभी जब हम देखेंगे तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारत मसाला फसल अनुसंधान संस्थान जो कालीकट में है, कोझिकोड में, तो उनके अंतर्गत तकरीबन 19 अलग अलग राज्यों में ये अखिल भारतीय समन्वित मसाला फसलों के केंद्र है वो कार्यान्वित है। तो उसमें आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक है दापोली में, दूसरे कोटांगी ओडिशा में है, ऐसे अलग अलग राज्यों में है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्मों की जो वैरायटी हम बोलते हैं वो विकसित हुए हुए है। जैसे कि हम बिहार की बात करें तो वहां पे राजेंद्र सोनिया वैरायटी है, ओडिशा की बात करें तो पोटांगी से रोमा वैरायटी है जो अच्छी फसल दे रही है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें जैसे कि लकाडोंस के सिलेक्शन से मेगा वन टर्मरिक है जिसका कुर्कुमिन परसेंटेज और फसल जो है फसल का उत्पादन वो अच्छा है। तो ऐसे अलग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने BSR 1, 2, 3 ऐसा हल्दी के बारे में नया किस्में लाई है। हम देखेंगे तो इससे हमारी उत्पादकता जो है उत्पादकता बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। लेकिन इसमें दिक्कत है कि फार्मर्स जो है, जो किसान है, वो हमारा जो पारंपरिक जो बीज है वही वो यूज कर
लगाता है। कैसे रिप्लेस कराने के दिशा में क्या हम काम कर सकते हैं?
उसके रिप्लेस करने के लिए हमारा जो भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान है तो वहां भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि ISR प्रगति है, ISR प्रतिभा है, जो यील्ड के बारे में, कुर्कुमिन के बारे में बहुत अच्छे है। तो अभी हम सभी फार्मर्स को ये जो सीड है सीड बांट रहे हैं, जैसे कि कोई इसमें सीड रिप्लेसमेंट रेशियो कम होने की, क्योंकि इसकी जो लागत है 1 एकड़ के लिए, लागत के लिए तकरीबन 1 टन बीज की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसके लिए हमने सिंगल बर्ड राइजोम, जो पोल्ट्री में हम जैसे सब्जी के पौधे तैयार करते हैं वैसे सिंगल बर्ड पोल्ट्री का भी तकनीक का संशोधन इसमें किया है। तो उससे क्या है कि जहां 1 टन हल्दी का बीज लगता है वहां तकरीबन 150-200 kg में 1 एकड़ का बीज हम तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो है हम टिश्यू कल्चर के बारे में भी अभी संशोधन है और संशोधन शुरू है, तो इसका भी फायदा हो जाए कि जितने ज्यादा हम मल्टीपल जो ये प्रमुख नए नए किस्में हैं, नए नए वान हैं, उसको बीज तैयार करके, पौधे तैयार करके हम फार्मर्स में बांट सकते हैं। अभी प्रोसेस शुरू हो गई है और इसपे जरूर उसका बढ़ावा हो जाएगा, और ये सीड रिप्लेसमेंट रेशियो जब बढ़ेगा तो हमारा जो उत्पादन जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरा चैलेंज अभी भी इसमें है कि जो पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे तो सेंद्रीय हल्दी की डिमांड जो है, सेंद्रीय हल्दी की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सेंद्रीय हल्दी की डिमांड जैसी बढ़ रही है लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेशन करना जरूरी है। तो वो जो सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस अभी एक, जैसे कि ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड बन गया है तो इससे और ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ताकि हमारा जो हल्दी की आइडेंटिटी है पूरे वर्ल्ड में ये अलग सी बन जाए कि ये सेंद्रीय वाली हल्दी हम बना रहे हैं।
हमारे संवाददाता हैदराबाद से MS लक्ष्मी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी हल्दी पर।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के कल औपचारिक शुभारंभ के साथ तेलंगाना के निजामाबाद के हल्दी किसानों का लंबे समय सपना पूरा हो गया है। मार्च महीने तक चलने वाले हल्दी सीजन की शुरुआत में बोर्ड के घटना से किसान बेहद खुश हैं। निजामाबाद का केंद्र बनाकर बोर्ड की स्थापना की गई है और पी गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष होंगे। नवगठित बोर्ड में आयुष, औषधि विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और वाणिज्य विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और मेघालय जैसा अधिक हल्दी उत्पादक राज्यों और निर्यातकों और उत्पादकों के निकायों का भी प्रतिनिधित्व होंगे। कल मकर संक्रांति के शुभ दिन पर हल्दी बोर्ड के शुभारंभ से न केवल निजामाबाद बल्कि तेलंगाना राज्य के जगित्याल, निर्मल, विकाराबाद, वरंगल और महबूबाबाद जैसे जिलों के हल्दी किसानों को भी लाभ मिलने जा रहे हैं, जहां 18,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हल्दी की खेती होती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय जैसा 10 राज्यों के किसान भी हल्दी के खेतों में काफी योगदान देते हैं। दुनिया के कुल हल्दी उत्पादन में भारत का बड़ा योगदान है, जिसे भारतीय केसर का नाम से भी जाना जाता है। 11 लाख टन से अधिक वार्षिक उत्पादन के साथ भारत 80% से ज्यादा वैश्विक उत्पादन में योगदान देती है। इसके बाद चीन 8%, म्यांमार 4% और नाइजीरिया और बांग्लादेश 3% से 7 अगले स्थानों पर हैं। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कृषि बाजार खुफिया केंद्र के रिपोर्ट के अनुसार देश ने 2022 और 23 सीजन के दौरान 1.5 लाख टन से ज्यादा हल्दी का निर्यात किया है। गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाने जाने वाले ये टर्मरिक यानी हल्दी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना पर तेलंगाना के हल्दी किसान खुशी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में वैश्विक बाजार में विशेष रूप से यूएसए, यूके और मलेशिया से अच्छी निर्यात मांग देखी जा रही है। हल्दी की फसल का उत्पादन मौसम, वर्षा और कटाई के बाद की प्रक्रिया जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए नई बोर्ड से नई हल्दी प्रजातियों के अनुसंधान और विकास का बढ़ावा देने और विदेशों में कॉमर्स के लिए हल्दी से संबंधित उत्पादों को मूल्य संवर्धन विचार करने की उम्मीद है। बोर्ड से हल्दी की आवश्यक और चिकित्सीय गुणों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके उपज बढ़ाने के तरीके और नई बाजारों में व्यापार का बढ़ावा देने के लिए मदद करने के भी उम्मीद है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी क्षेत्र के समग्र विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये हल्दी और उसके उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने के लिए मौजूदा विशाल क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का मदद करेगा, खासकर हल्दी के स्वास्थ्य और कल्याण लाभों के मद्देनजर। हैदराबाद से लक्ष्मी।
डॉक्टर साहब, हम एक बात कह रहे थे कि दुनिया भर में जो हल्दी के बाजार खुल रहा है या बाजार बनता जा रहा है, बोर्ड बनाने का लाभ हमें लगता है कि किसानों में सबसे बड़ी चीज है जागरूकता को बढ़ाना, ताकि उनके रिप्लेसमेंट बढ़ाया जाए, उनको क्वालिटी कैसे सुधारी जाए, कि क्यूमिन वाली कौन सी एरिया में किस स्टेट में कौन सी प्रजाति लगाई जाए, इसके बारे में जागरूक करने और एक्सटेंशन खासतौर से किसानों को कैसे जागरूक किया जाए, इस बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, कंज्यूमर्स को भी इसके बारे में बताने की जरूरत है कि खपत को कैसे बढ़ाया जाए, खपत बढ़ाने के लिए घरेलू खपत कैसे बढ़े और किस तरह की हल्दी और कैसे उसका उपयोग किया जाए। इसी तरह से निर्यात बढ़ाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए कि किस तरह की डिमांड है दुनिया के बाजार में, किस तरह की हल्दी हमें चाहिए, उसी तरह की फसलों का उत्पादन वो बढ़ाएं और करें, ताकि हम निर्यात करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए बाजार विकसित कर सकें। क्योंकि जो अभी हमारे पास बाजार है उसमें बांग्लादेश है, यूएई है, यूएसए है, यानी अमेरिका है, और मलेशिया जैसे प्रमुख देश हैं जहां हम हल्दी का पर्याप्त निर्यात कर पा रहे हैं। लेकिन दुनिया के अभी ढेर सारा बाजार खुला पड़ा है जहां से बाजार से मांग निकल रही है, और बढ़ती मांग को पूरा करने और बाजार में अपनी पैठ बनाई रखने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बोर्ड बना है, बोर्ड के गठन के साथ ही दूसरे मंत्रालयों को भी इस बोर्ड में मेंबर बनाया गया है, जैसे आयुष मंत्रालय है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है और तमाम अन्य जो इससे जुड़े हुए मंत्रालय और विभाग हैं, ताकि इसका जो बोर्ड लोगों तक पहुंच सके, किसानों तक पहुंच सके, आयुष विभाग जो इसके मेडिसिनल वैल्यू है उसका कैसे लाभ उठाया जाए, कैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी कितनी है, और हमारे यहाँ तो भारत में तो इसके सामाजिक मायने भी बहुत होते हैं, इसकी सामाजिक वैल्यू भी है, इन सब चीजों को इतना कुछ देखते हुए इस विस्तार को कैसे और बढ़ाया जा सकता है और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है, हमें लगता है बोर्ड इस दिशा में प्रयास करेगा। डॉक्टर साहब, आप तो उसके मेंबर हैं, आप थोड़ा इसको विस्तार से बताएं प्लीज।
मैं ये कह रहा हूँ, हल्दी का डिमांड तो पूरी दुनिया में है और 70% भाग जो है हल्दी हम भारत में पैदा करते हैं। गवर्नमेंट की एक इच्छा है कि हम 5 साल में इसको जो है दुगना करने के प्लान में है कि इसका विषय का आपने कहा कि आयुष मंत्रालय वाले और के लोग एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग सारे लोगों को इसलिए जोड़ा गया है कि सारे लोगों अपना अपना एक अनुभव रखेंगे किसान के यहाँ उत्पादन कैसे बढ़ सकता है निर्यात कैसे हो सकता है उसके भी बड़ी जो इसका वो अपना अनुभव साझा करेंगे। इसमें जो साइंटिस्ट लोग हैं जो सरकार के ICAR के जो मसाला बोर्ड में है तो इन लोग सबके अनुभव से ही काम होगा और ज्यादा संभावना है जबकि हल्दी को पब्लिक कार्यों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। आयुर्वेद में हरदरा खंड आता है कई तरह दवाइयों में इसको मिलाते हैं इसका उपयोग होता है इसके बारे में और जागरूकता लाने की जरूरत है कि इसको अधिक से अधिक उपयोग करके इसके इससे हम जो कि एंटीबायोटिक होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है इसमें कई चीजें होती हैं एंटीऑक्सीडेंट होता है तो ये सब चीजों को जब लोगों को पता होगा जैसे कोरोना काल में काफी लोगों को पता चला पूरी दुनिया में लोगों ने देखा कि हल्दी को दूध में मिला के पीने से हमारी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ेगी तो इस तरह से प्रचार प्रसार होगा एक नया बोर्ड बन जाने से इसमें और काम जो होगा हमको लग रहा है कि और अच्छे तरीके से होगा इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा क्योंकि हल्दी पर ही हमको ध्यान देना है। स्पाइस बोर्ड में काफी विषय काफी मसाले हैं कई उसमें छोटी इलायची बड़ी इलायची जायफल दुनिया भर की चीजें हैं तो एक अच्छा कदम है सरकार का।
डॉक्टर साहब आप बनारस से जुड़े हुए हैं पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश के हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि जो सामान्य तौर पर हल्दी कही जाती है कि ये साउथ के स्टेट्स में ज्यादा इसकी पैदावार होती है या आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र है तमिलनाडु है तेलंगाना उड़ीसा मध्य प्रदेश तक तो काफी कुछ है बाकी स्टेट्स में नॉर्दर्न स्टेट्स में इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितना प्रयास किया जा सकता है या किया जा रहा है या संभावनाएं कितनी है।
आप सही कह रहे हैं यूपी में हल्दी खेती बहुत नाम मात्र की है कुछ किसान ज्यादातर किसान जो अपने खाने के लिए छोटे छोटे किसान या बड़े किसान हो बिस्सा दो बिस्सा लगा लेते हैं वो अलग विषय है अपना घर के पैदा कर लिए खाए लेकिन लार्ज स्केल पर कमर्शियल खेती इसकी जो है इस तरह से यूपी में नहीं हो रही है और इसमें इस पर जोर देने की जरूरत है इसमें सरकार उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार इसमें जो इसका प्रचार प्रसार करे एक्सटेंशन विभाग उसको देखे और इनको प्रोसेसिंग करने की सुविधा क्योंकि प्रोसेसिंग और मार्केटिंग यहाँ पर जो है स्पाइस बोर्ड की भी इस तरह का वही बहुत बड़ा नई प्लेटफॉर्म बना है जहाँ की अपने हल्दी को प्रोसेस कर सके उसका टेस्टिंग करा सके विदेश भेजने के लिए उसका जो प्रक्रियाएं होती हैं तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है।
तो हमें लगता है कि ये जो बोर्ड बन रहा है इस बोर्ड के शुभारंभ होने से या चालू हो जाने से माल के संग्रहण करने या उसकी जो सप्लाई चेन को ठीक करने नए बाजार में इसको बढ़ावा देने साथ साथ जो प्रोसेसिंग एक बड़ी चीज है किसानों को खासतौर से उन स्टेट्स में जहाँ पे हल्दी की खेती व्यावसायिक तौर पर नहीं होती है जिन स्टेट्स में होती है उनके यहाँ तो ठीक है प्रोसेसिंग हो सकता हो रही हो लेकिन प्रोसेसिंग की क्वालिटी को और सुधार किया जा सकता है और सुधार करने की हमें लगता है जरूरत है ताकि जो उसकी क्वालिटेटिव जो उसके गुण है उसमें और बढ़ोतरी हो सके खासतौर से जो करक्यूमिन की बात चल रही है डॉक्टर कदम बता रहे थे बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि किस किस GI टैग के और किन किन जगहों पे कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी की हल्दी है जिनकी खेती हो रही है और उसे कैसे टैग करके और कैसे सर्टिफाइड किया जाए। डॉक्टर कदम हम आपसे एक बात चीज और जानना चाहेंगे इसी के साथ कि सर्टिफाई कैसे होगा कि किसमें करक्यूमिन ज्यादा है ये कौन सी लेबोरेटरी क्या कुछ इस तरह की लेबोरेटरी ऑलरेडी इंडिया में है या इसको और विकसित करने की जरूरत है खासतौर से इस बोर्ड के आने के बाद से ऐसी लेबोरेटरी जगह जगह पे बनानी पड़ेगी।
अभी जो है ये अपने जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के अलग अलग ठिकानों पे ये लेबोरेटरी है जैसे कि बम्बई से ज्यादा निर्यात होती है तो बम्बई में एक लेबोरेटरी है कोचिन में है नीचे ऐसे अलग अलग जगह पे इनकी लेबोरेटरी है जहाँ पे ये जो कुर्कमिन है कुर्कमिन टेस्ट किया जाता है। अभी ये जो कुर्कमिन टेस्ट होता है ये कुर्कमिन किस्मों पे जवाबदार रहता है और दूसरा जो है जहां पर ये पैदावश की जाती है वहां का एनवायरमेंट उससे भी उसमें कुर्कुमिन में कम ज्यादा होते हैं। जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्ट की मैंने बताया कि लकाडोंग टर्मरिक है वो स्पेसिफिक है जिसमें कुर्कुमिन परसेंटेज 8 के ऊपर है लेकिन वही हल्दी जब हम महाराष्ट्र में ग्रो करेंगे या नीचे साउथ में ग्रो करेंगे तो उसमें कुर्कुमिन परसेंटेज उतना नहीं मिलता है इससे कम मिलता है क्योंकि उसका जो भौगोलिक दृष्टि देखें कि जिसका जो क्लाइमेट है जो वातावरण है वो अलग है तो इस वजह से जहाँ पे जो हल्दी अच्छी आती है उसी हल्दी को हम बढ़ावा देंगे तो हमारा जो निर्यात है निर्यात बढ़ जाएगा हमारा उत्पादक प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा जो है कि अभी जो हमें दिक्कतें आ रही है उसमें रेसिड्यू मैनेजमेंट जो भी हम हल्दी बाहर निर्यात कर रहे हैं इसमें पेस्टिसाइड फंजीसाइड की रेसिड्यू जो है रेसिड्यू आ रही है क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी जो किसान जो बहुत से पेस्टिसाइड फंजीसाइड यूज कर रहे हैं उसको कोई उसमें कंट्रोल नहीं है इसलिए जैसे कि हम इस बोर्ड के माध्यम से सेंद्रीय हल्दी के लिए हम बढ़ावा देंगे तो हमारी क्वालिटी जो है गुणवत्ता बढ़ जाएगी।
विजयवाड़ा से हमारे संवाददाता साई वेम्पत्ति अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हल्दी के वहाँ उत्पादन पर, वहाँ की क्या स्थिति है।
आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती होती है, जिससे सालाना करीब 75,000 टन हल्दी का उत्पादन होता है। अनंतपुर जिले के अलावा इस राज्य में लगभग सभी जिलों में हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी उत्पादन का विशेष केंद्र कृष्णा जोन है, जिसमें कृष्णा, गुंटूर, बापटला, पलनाडु और प्रकाशम जिले शामिल हैं। चक्रवात की वजह से पहले हल्दी के उत्पादन पर असर होता था, लेकिन इस साल हल्दी का मूल्य 15,000 से 19,000 प्रति क्विंटल के बीच रहा, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ। इस भारी उत्पादन से किसानों में हल्दी की खेती को लेकर रुचि बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में पार्वतीपुरम मान्यम जिले में हल्दी प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस केंद्र की स्थापना से 2,000 जनजातीय किसानों को मदद मिलेगी, जो हल्दी की एक स्थानीय किस्म का उत्पादन करते हैं। ये जनजातीय किसान हल्दी की जिस खास किस्म का उत्पादन करते हैं, उसमें सामान्य हल्दी के मुकाबले अधिक कर्क्यूमिन होता है। इसके अतिरिक्त राजामुंद्री के सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये भी घोषणा की है कि ये संस्थान हल्दी के लिए फसल कटाई के बाद की तकनीकों और मूल्य संवर्धन प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है। इन कदमों के साथ साथ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना से किसानों की आय बढ़ाने और आंध्र प्रदेश में हल्दी की पैदावार को बढ़ावा मिलने की आशा जताई जा रही है। विजयवाड़ा से साई वेम्पति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
आने वाले दिनों में अभी तो लगता है कि दुनिया के जो बाजार खुल रहे हैं, बाजार में सिर्फ भारत की अपना दबदबा है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे जो एशियाई और देश हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे और हमें उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी गुणवत्ता ही एक हमारा मानक होगा, जिसको बनाए रखने की जरूरत होगी। हमें लगता है कि जो हमारा भारतीय बोर्ड है, हल्दी बोर्ड है, ये इसमें एक सहायक की भूमिका में होगा, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि किसानों को वो सुविधाएं देना। सबसे पहले सीड की जरूरत है, जो इनपुट इनको दिया जाता है। दूसरी चीज है जो वैज्ञानिक नॉलेज देना, उनको वो ज्ञान देना, वो जानकारी देना कि वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे की जाए, और उनको सीड के साथ वो इनपुट जो उसमें कौन सी खाद दी जाए, कौन से पेस्टिसाइड यूज करना है या नहीं यूज करना है, फंगिसाइड, फंगस या ढेर सारी इस तरह की बीमारियां कोई इसमें न पकड़ रही हो। तीसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर कदम ने बताया कि जो मेघालय में जो नॉर्थ ईस्ट में क्वालिटी हल्दी में पैदा होती है, वो क्वालिटी वही अगर हम सीड लाकर यहाँ हम लगाएं महाराष्ट्र या दूसरे स्टेट में, तो वो क्वालिटी या वो क्यूमिन की परसेंटेज नहीं मिलता है। ऐसे में उन किसानों को ये बताने की जरूरत है कि जिस स्टेट की, जिस जमीन की, जिस वातावरण की, जिस जलवायु के क्षेत्र में जैसी क्वालिटी बेहतर उत्पादन या उत्पादकता दे सकती हो, किसानों को वैसे ही सीड उपलब्ध कराया जाए और उनको ये बताया जाए कि कौन सी फसल कहाँ लगाई जा सकती है, कौन सी वेराइटी कहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हमें लगता है कि ये उठा करके अगर ये व्यवस्था की जाए, तो हमें लगता है ये बोर्ड की पहली जिम्मेदारी होगी शुरुआती दौर में कि किसानों को एकजुट करके और अपने जो एक्सटेंशन प्रणाली है इसको मजबूत करके किसानों को जानकारी देना, और दूसरा है जब उनकी फसल तैयार होती है तो उसकी प्रोसेसिंग की जो व्यवस्था होती है, परंपरागत पहले से कभी व्यवस्था बनी है नहीं, इंटरनेशनल मानक को हमें फॉलो करना होगा, हमें उसी लेवल पर जाकर के अपनी फसल का उत्पादन करना होगा, अपनी पैदावार करना होगा, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और अपनी हल्दी की धमक जैसे देश में बनी हुई है वैसे पूरी दुनिया में बना सकते हैं। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर पदम और डॉक्टर चंद्रशेखर, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना से भारत में हल्दी उत्पादन के प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय अजैविक ताण प्रबंधन संस्थान पुणे के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार कदम और स्पाइसेस बोर्ड के सदस्य पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।